हरे कृष्णा। तो आज जन्माष्टमी के परम पवित्र अवसर पर हे भगवान के आविर्भाव की तिथि है, कुछ ही मिनट अभी दूर है, तो उस समय हम भगवान की महिमा के बारे में दो लीलाओं के द्वारा चर्चा करेंगे। तो पहले मैं हमारे जीवन में जन्म होता है, अंत होता है, तो और उसके बीच में जो भी घटनाएं होती हैं उनको हम जीवन कहते हैं, पर वास्तव में हमारा जीवन शाश्वत है। सो लाइफ डज नॉट बिगिन विद बर्थ नॉर एंड विद डेथ। जीवन जो है हमारे जन्म से पहले भी होता है और मृत्यु के आगे भी चालू रहता है, पर हमारी दृष्टि में जन्म और मृत्यु ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो भगवान कैसे जन्म लेते हैं और कैसे किसी को जो जीवन का अंतिम स्तर है मृत्यु, उसमें कैसे मदद करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जैसे भगवान के एक महान भक्त है भीष्म पितामह, उनकी लीला के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर जैसे भगवान की जन्म की तिथि आएगी पास में तो हम उनके जन्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो भीष्म पितामह ये एक बहुत ही दिलचस्प हस्ती है महाभारत में। तो वे सबसे बुजुर्ग है और परिस्थिति के वश से उनको पांडवों के खिलाफ युद्ध करना पड़ता है, उनको कृष्ण के खिलाफ युद्ध करना पड़ता है। दुनिया जो है वो व्यक्ति को बाहर से देखती है और शायद बाहर से काफी समय के बाद व्यक्ति के अंदर क्या है वो देख पाते हैं। द वर्ल्ड सीज अस आउटसाइड इन, गॉड सीज अस इनसाइड आउट। तो भगवान सबसे पहले अंदर हृदय में क्या भाव है वो देखते हैं और उसके बाद में बाहर से क्या कार्य कर रहे हैं वो देखते हैं। तो यह जो भगवान की दृष्टि है, सबसे पहले अंदर देखना, यह वास्तव में हम सबको बहुत सांत्वना और शक्ति दे सकती है, क्योंकि अगर हम बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ चीज़ें होगी, शायद हम दिखने में अच्छे हैं, हमारे पास ऐश्वर्य है, हमारे पास बोलने की शक्ति है, हमारे पास बहुत सी संपत्ति है या ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में बड़ी आकर्षक लगती है। पर ये चीज़ें हमारे पास कितनी भी होगी, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास हमसे वो ज़्यादा होगी, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण इनसिक्योरिटी आ जाती है, उसके कारण हम खुद को कम मानने लगते हैं, और समाज की जो चेतना होती है वह उसके सुख की परिभाषा पर निर्भर होती है। जिस चीजों में हम सोचते हैं कि मुझे सुख मिलेगा उसके आधार पर हम परिभाषा करते हैं, अच्छा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो आजकल के समाज में लोगों की क्या इच्छाएं हैं वो हम क्या विज्ञापन दिखते हैं उससे हम समझ सकते हैं। सो द एडवर्टाइजमेंट्स रिफ्लेक्ट डिजायर्स एंड द एडवर्टाइजमेंट्स रीइन्फोर्स डिजायर्स। जो विज्ञापन होते हैं वो दिखाते हैं कि लोगों की इच्छा क्या है, और जिनमें वो इच्छा नहीं है वो विज्ञापन वो इच्छा जागरूक भी कर देते हैं। तो दोनों प्रकार से कार्य होते हैं, रिफ्लेक्ट डिजायर्स एंड द रीइन्फोर्स डिजायर्स। तो मैं एक विज्ञापन देखा, क्या लिखा, एक व्यक्ति था, नौजवान युवक था, वो एक कार में जा रहा था, और जब वो कार में जा रहा था तो एक युवती उसकी ओर बड़े एडमिरेशन, बड़े व्हाट इज एडमिरेशन इन हिंदी, प्रशंसात्मक, बड़े प्रिय दृष्टि से देख रही थी, और पीछे से दूसरा एक युवक था वो बड़े घूर के देख रहा था, और वो एडवर्टाइज का क्या दिखा था, बाय दिस कार एंड एंजॉय द एनवी इन योर नेबर्स आईज। ये कार खरीदो और आपका जो पड़ोसी है उसके आंखों में ईर्ष्या जो आएगी वो ईर्ष्या का भोग करो। तो अभी वास्तव में ये कितना नीचे का स्तर है सुख का। हाँ, अगर दूसरे के आंखों में ईर्ष्या आती है उससे कुछ सुख मिलने वाला मिलेगा, पर वो बहुत ही नीचे के स्तर का सुख है। वह ऐसा सुख है वो खुद के सुख में सुख नहीं है, वो खुद के सुख से दूसरों को दुख हो रहा है, वो दुख में सुख है। तो ये बड़ा ही विकृत स्तर का, बड़ा ही नीचे के स्तर का सुख है ये। तो सुख के भी अलग अलग स्तर होते हैं, और जब हम भक्ति करते हैं तो हमें सबसे ऊंचे स्तर का सुख मिलता है। अभी ये ऊंचा स्तर और नीचे स्तर हम किस तरह से फैसला कर सकते हैं, किस तरह से कि जो हम सुख प्राप्त करते हैं हमारे सुख से दूसरों को क्या होता है। तो अभी मैं ईर्ष्या का उदाहरण दिया, तो हमारा सुख किस में आ रहा है? अगर मान लीजिए मैंने नया कार खरीद लिया पर मेरे पड़ोसी ने मुझसे अच्छा कार खरीद लिया, तो मुझे कुछ सुख नहीं मिलने वाला है, उल्टा मुझे दुख होगा। और वह भी अगर मेरे ही स्तर पे उसकी चेतना, तो मेरे दुख से उसको सुख मिलेगा। तो क्या है, ये स्तर में हैप्पीनेस इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम मतलब उसमें किसी को वास्तव में सुख नहीं मिलने वाला है, मेरे सुख से दूसरे का सुख कम होने वाला है, दूसरों के सुख से मेरा सुख कम होने वाला है। तो इसीलिए इस स्तर में जो सुख है वो कभी शाश्वत नहीं रहता है। मेरे पास आएगा, मुझसे चला जाएगा, किसी और के पास आ जाएगा, वो किसी और से चला जाएगा, फिर मेरे पास आएगा। ऐसा जो सुख है वह अस्थाई है। इससे ऊंचा जो सुख है, भक्ति का जो सुख है, वो सर्वोच्च सुख है। और सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि ये ऐसा सुख है कि हमारा सुख जो है दूसरों के सुख को बढ़ाता है। जब हम भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं, जब हम भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में, भगवान के श्रवण में आनंद लेते हैं, तो हमारे आनंद से किसी का और का आनंद कम नहीं होता है, हमारे आनंद से वास्तव में दूसरों का आनंद बढ़ता है। मान लीजिए कोई स्वादिष्ट व्यंजन है, अगर मान अभी जब अभी फास्ट अभी उपवास कई आपने से कर रहे हो गए, हम सब उपवास कर रहे हैं, तो उपवास जब ब्रेक करेंगे तो शायद उसमें कुछ स्वीट होगा, स्वादिष्ट व्यंजन है, पर वास्तव में क्या है, यह एक सीमित मात्रा में, जितना वो हम व्यंजन खा लेते हैं उतना वो कम हो जाता है और फिर वह खत्म हो जाता है। पर भगवान के भक्ति में जो आनंद है वह असीमित है। जितना हम आनंद प्राप्त करते हैं, अगर कोई भक्त है भगवान के कीर्तन में बड़े रुचि से कीर्तन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वह देख के दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, अच्छा ये कीर्तन इतने उत्साह से कर रहे हैं, मुझे भी कीर्तन करना चाहिए। और उससे जब हम भी उत्साह से कीर्तन करते हैं तो हमें भी आनंद महसूस होता है। तो भक्ति का आनंद सर्वोच्च इसलिए भी है, अनेक कारण है, पर एक कारण हमारे तुलना में हमारे इस विश्लेषण में कारण यह है कि यह जो आनंद है दूसरों को दुख देख के नहीं मिलता है, यह आनंद जो है हमारे सुख से दूसरों को भी सुख मिलता है। डिवोशन मेक्स अस जॉयफुल एंड मेक्स अस चैनल्स ऑफ जॉयफुलनेस। भक्ति जो है हमें सुख देता है और फिर हमें एक वास्तव में सुख का मार्ग बना देता है, जिससे कि हम भी दूसरों को सुख प्राप्त सुख दे सकते हैं। इस तरह से ये जो सुख है यह अगर हम प्राप्त करते हैं तो हम कभी इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि बाह्य रूप से अगर सुख प्राप्त करते हैं तो फिर हम हमेशा चिंता में रहते हैं। ये सुख है मेरे पास, अगर मैं धन से सुख आ रहा है, संपत्ति मेरे सत्ता से सुख आ रहा है, मेरे शक्ति से सुख आ रहा है, तो वो कभी भी जा सकती है। तो भगवान जो है हमें कैसे देखते हैं, गॉड सीज अस इनसाइड आउट, अंदर से बाहर देखते हैं। इसीलिए बाहर हमारे पास क्या हो क्या नहीं है यह भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अंतरंग चेतना क्या है उसके आधार पर भगवान हमें उनकी कृपा देते हैं, और यह भीष्म पितामह की लीला से दर्शाया जाता है। बाह्य रूप से भीष्म पितामह भगवान के शत्रु थे, वह जब अर्जुन के सारथी थे भगवान पार्थ सारथी के रूप में, तो जब भीष्म तीर मार रहे थे, साधारणतः योद्धा योद्धा को तीर मारता है, पर क्योंकि रथ इधर उधर हिल रहा होता है तो कभी योद्धा को जो तीर मारा जा रहा है वो कभी सारथी को भी जाके लग जा सकता है। तो भीष्म पितामह याद करते हैं, युधितुरग रजो विधुम रविश्वक कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्य मम निशित शरैर विद्यमाना त्वचिविलसत् कवचे स्तु कृष्ण आत्मा। तो याद कर रहे हैं, मम निशित शरैर विविद्यमाना, जब मैंने तीर मारे तो क्या हुआ, वो तीर जाके भगवान के शरीर को लगे। कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्य, और वो कह रहे हैं कि भगवान का शरीर इतना दिव्य है कि जब वे रणभूमि में युद्ध कर रहे थे, तो रणभूमि में जब युद्ध हो रहा था तो तभी क्या हो रहा था, युधिष्ठिरग्रजो विधुम रविश्वक, तो तभी सारे घोड़े जब दौड़ रहे थे इधर उधर से, उनके दौड़ने से धूल जो मिट्टी थी ऊपर उड़ गई थी, और जब मिट्टी ऊपर आ गई थी तो वो भगवान के चेहरे पे लग गई थी। तो साधारणतया कोई व्यक्ति जब हम देखते हैं, अगर वो सुंदर दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, तो काफ़ी वो सजावट करते हैं, और कुछ भी अगर गंदगी हो गई तो सुंदर नहीं दिखते हैं। तो बड़े साफ सफाई करने के बाद, सजावट करने के बाद व्यक्ति सुंदर लगते हैं, पर भगवान का ऐसा अलौकिक सौंदर्य है कि वो जो घोड़ों के पैरों से जो धूल निकली है वो भगवान के चेहरे पे लगी हुए, पर वो भगवान के चेहरे पे लगने से उनका सौंदर्य और बढ़ गया है। और भगवान जब घोड़ों को संभाल रहे हैं तो घोड़ों को इधर उधर हिलाना होता है, खींचना होता है, तो वो काफ़ी मेहनत का काम होता है, तो उससे भगवान के चेहरे पे पसीना आ गया है, पर वो पसीने से भी उनका सौंदर्य और बढ़ गया है। और वो कह रहे हैं कि मैंने जब तीर मारे वो तीरों से खून भी निकल रहा है, पर वो खून से भी क्या हो रहा है, अलंकृतास्य, यह भगवान के लिए अलंकार है। तो भगवान का सौंदर्य है जो वो किसी बाहर की चीज़ें, बाह्य चीज पे निर्भर नहीं होता है, उनका अंतरंग सौंदर्य है, और जो भी है वो, जो भी परिस्थिति है वो उनके सौंदर्य को और बढ़ा देती है। तो इस तरह से भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं कि हे भगवान, मम निशित चिलसत कवचे स्तु कृष्ण आत्मा, वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी चेतना भी आपके ओर आने दो। एक तरह से देखा जाए तो भीष्म पितामह इस जो प्रार्थना जब बोल रहे हैं तो वो रणभूमि पे लेटे हुए हैं, तीरों के एक बिस्तर पे, और इनकी जो परिस्थिति है एक तरह से कृष्ण और अर्जुन ने ही किया, अर्जुन के तीरों से उनकी परिस्थिति हुई है। पर कृष्ण क्या देख रहे हैं और भीष्म क्या देख रहे हैं, भीष्म देख रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे भक्त है, ये मेरे स्वामी है, ये मेरे आराध्य देव है, और मैं चाहता हूँ कि इस समय मेरी चेतना उनमें लग जाए। और भगवान कृष्ण जब आते हैं उनके भीष्म पितामह के सामने, भीष्म भगवान ये नहीं देखते कि इसने मुझ पे तीर मारा था, इसने मेरे भक्त अर्जुन पे तीर मारा था, भगवान क्या देखते हैं, ये मेरे महान भक्त है और मैं इनको कृपा देने के लिए आया हूँ। तथाप्येकांत भक्तानां पश्य भूपानुकंपितं यन्मे स्युस्तजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः, कि कृष्ण मुझे दर्शन देने आ गए हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं क्यों आ गए हैं, क्योंकि मैंने उनकी भक्ति की है। दुनिया कहेगी तुमने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया, पर भगवान दुनिया की बात को जरूर महत्व नहीं देते, भगवान भीष्म के हृदय को देख रहे हैं। और क्या देखते हैं वो, कि भगवान भीष्म के द्वारा एक सीख देना चाहते थे। क्या सीख थी वो, कि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज्ञानवान थे, और जब वो किसी पक्ष में युद्ध कर रहे हैं तो उस पक्ष की जीत की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। पर भगवान ने क्या दर्शाया, भगवान ने भीष्म को उनके हृदय के अंदर से प्रेरणा दी कि तुम कौरव के पक्ष से युद्ध करो, और फिर उन्हें दर्शाया कि भीष्म पितामह के श्रेणी का भी योद्धा अगर युद्ध कर रहा है पर वह धर्म के खिलाफ जाता है, वह भगवान के खिलाफ जाता है, तो उसकी पराजय हो जाएगी। तो अभी तो भीष्म पितामह जानते थे कि मैं जिस पक्ष में युद्ध करूंगा मैं उसमें परास्त हो जाऊंगा, मैं जिस पक्ष में युद्ध करूंगा वह अधर्म के पक्ष में है, मैं जिस पक्ष में युद्ध करूंगा उससे मैं बदनाम हो जाऊंगा कि मैंने अधर्म के पक्ष में युद्ध किया है। बाह्य रूप से भीष्म पितामह जो है ऐसा चुनाव, ऐसी परिस्थिति में आ गए थे वो कि हर तरह से अपयश और उनको मिलने वाला था, पर उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने देखा कि भगवान की क्या इच्छा है, और भगवान ने क्या देखा, ये बाह्य परिस्थिति नहीं देखी, उन्होंने देखा कि यह मेरे भक्त है, और इस तरह से भगवान उनको कृपा देने आ गए। तो भगवान हमें हमेशा बाहर से नहीं देखते हैं, अंदर से देखते हैं, अंदर का भाव देखते हैं। और यही जो महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो 10वें दिन भीष्म पितामह युद्ध का आखिरी दिन था, उसके पिछले दिन 9वें दिन में जब युद्ध हो रहा था, तो तभी भीष्म पितामह ने शुरू में व्रत लिया कि आज या तो मैं पांडवों का वध करूंगा, नहीं तो मैं आज कृष्ण को शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा। अभी जब ऐसा व्रत लिया भीष्म पितामह ने, तो उनका भाव क्या था? उनका भाव यह था कि वे जानते थे कि कृष्ण कभी पांडवों का, खास करके अर्जुन का वध होने नहीं देंगे, तो वो देखना चाहते थे कि क्या लीला करेंगे कृष्ण जिससे कि वो अपने भक्त को बचाएंगे। तो उन्होंने ऐसा व्रत इसलिए लिया कि देखने को कि कृष्ण क्या लीला करने वाले हैं। और ऐसे भाव से उन्होंने क्या किया, उस दिन ऐसा भीषण युद्ध किया। भीष्म पितामह अपने पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे, उसके पहले के दिनों में भी युद्ध कर रहे थे, पर फिर भी उनका पूरा हृदय उसमें नहीं था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि दुर्योधन तो इतना अधर्मी है, मैं उसके पक्ष में युद्ध कर रहा हूं। पर इस दिन उन्होंने अपने पूरा हृदय लगा के युद्ध किया। क्यों? वे दुर्योधन के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, वे कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे थे। किस तरह से? वे देख रहे थे कि कृष्ण क्या लीला करेंगे, कैसे अपने भक्त को बचाएंगे वो। और अर्जुन सोच रहे थे कि अरे ये तो मेरे दादा है, मैं उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। जब पहला दिन युद्ध का हो रहा था, उसके पहले वो जो भीष्म पितामह से मिलके आए, तो तभी अर्जुन कृष्ण से कहने लग गए कि अरे भीष्म जो है, जब मैं छोटा था मैं बाहर से खेल के आता था, और खेल के आके मैं फिर उनके गोदी में बैठ जाता था, और फिर मैं उनके दाढ़ी से खेला करता था, और खेलते खेलते मैं उनको पिता बुलाता था, तो तभी वे मुझे मेरे बाल सहारते थे और कहते थे बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का पिता हूँ। तो ऐसे भीष्म पितामह को मैं कैसे तीर चला सकता हूँ? तो कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, ये भावनाओं में जाने का वश, भावनाओं के वश में जाने का समय नहीं है, तुम अपना कर्तव्य याद करो। तो ये भाव था, अर्जुन अब युद्ध तो कर रहे थे, पर अर्जुन अपना पूरा हृदय नहीं लगा रहे थे युद्ध करने में, और दूसरी ओर से भीष्म अपने पूरी शक्ति से युद्ध लगा रहे थे, और वो पूरा पांडवों के पक्ष में विध्वंस कर रहे थे। और जब कृष्ण ने देखा, कृष्ण देखा कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे पूरी शक्ति से, और भीष्म इस तरह से युद्ध कर रहे हैं कि अभी अर्जुन का वध हो जाएगा, पांडवों का एक दिन में पराजय भी हो सकता है, तो कृष्ण विचार करने लगे, गंभीर हो गए। और फिर कृष्ण अर्जुन के रथ पे सारथी के रूप में थे, तो एकाएक कूद गए। अर्जुन देख रहे थे अरे कृष्ण अभी कहां चले गए, तो कृष्ण कूद गए और उन्हें इधर उधर देखा। वो अभी देख रहे थे कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा भीष्म के खिलाफ, तो मैं खुद युद्ध करूंगा। और उन्होंने इधर उधर देखा, तो अभी कोई शस्त्र खुद का शस्त्र था नहीं, तो उन्होंने उनके पास में एक रथ टूट गया था, उसका पहिया निकल के आ गया था, तो वो तुरंत उसके पहिया को उठाने लग गए। अभी रथ के पहिया को कोई उठाया उन्होंने, एक्चुअली कृष्ण का एक शस्त्र होता है सुदर्शन चक्र, तो अभी कृष्ण जो सुदर्शन चक्र से वह किसी भी कितना भी शक्तिशाली शस्त्रु है उसका वध कर सकते हैं। तो अभी जब उन्होंने ये चक्र देखा, तो उन्होंने उसको उठा लिया। जब ये चक्र उठाए, तो उनका नाम हो गया रथांग पाणे, रथ अंग, रथ का अंग था चक्र, वो उसका एक पहिया था, उसको उठा लिया। तो उन्होंने और रथ के चक्र को क्यों उठा लिया, अपने सुदर्शन चक्र को क्यों नहीं बुलाया? वो इतने चिंता में थे कि मेरे भक्त को क्या हो जाएगा, तो भूल गए चक्र को, सुदर्शन चक्र को बुलाने के लिए, इसलिए जो सामने दिख गया उसको उठा लिया। और अभी जब भी भगवान सुदर्शन चक्र लेते हैं, तो क्या होता है, वो जहां पे होते वहीं से सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, और वो जाके शत्रु का वध कर देता है। पर यहां पे क्या हुआ, भगवान कृष्ण इतने चिंता में थे अपने भक्त के लिए, तो उन्हें सोचा कि मैं यहां से अगर चक्र फेंकूंगा तो शायद वो निशाने को लगेगा, नहीं लगेगा पता नहीं, तो इसीलिए अगर किसी को गोली मारने दूर से मारेगा तो निशाना चूक जाएगा, तो उसके सामने जाओ फिर गोली मारो। तो ऐसे भगवान ने सोचा कि मैं भीष्म के पास जाऊंगा और वहां से चक्र फेंकूंगा, और वे भीष्म की ओर दौड़ने लग गए। तो अभी अर्जुन अपना युद्ध कर रहे थे तीर बाढ़ के, और देखा अरे कृष्ण कहां चले गए, देखा और देखा कि कृष्ण ने अभी रथ का पहिया उठा लिया और दौड़ रहे हैं। तो इससे अर्जुन बड़े विचलित हो गए। क्यों विचलित हो गए? अर्जुन को यह भय नहीं था कि भीष्म में मेरा वध कर देंगे, अर्जुन को यह भय नहीं था कि वहां पे कृष्ण अकेले जा रहे हैं, कोई उनका वध कर देगा। अर्जुन को भय यह था कि कृष्ण ने युद्ध शुरू होने के पहले व्रत लिया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अभी कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया और तुरंत समझ गए, दो व्यक्तियों में अगर बहुत स्नेह होता है तो बिना कुछ बोले ही समझ जाते ये ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बताया नहीं, पर अर्जुन समझ गए क्योंकि मैं पूरे उत्साह से युद्ध नहीं कर रहा था, इसीलिए कृष्ण ने अभी शस्त्र उठा लिया है। तो अर्जुन तुम कृष्ण को चिल्लाने, कृष्ण रुक जाओ, तुम शस्त्र मत उठाओ, क्योंकि कृष्ण को चिंता, अर्जुन को चिंता थी कि अगर कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया तो बाद में लोग उनकी निंदा करेंगे, लोग उनकी निंदा करेंगे कि तुमने व्रत लिया था शस्त्र नहीं उठाओगे और अभी शस्त्र उठा लिया है, देखो तुम अपने वचन के वचन निष्ठ नहीं हो। और अर्जुन को यह सहन नहीं हुआ कि कोई कृष्ण की निंदा करेगा, इसीलिए वो कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण रुक जाओ, मैं युद्ध करूंगा, मैं भीष्म का वध करूंगा, आप शस्त्र मत उठाओ। पर वो चिल्ला रहे थे इस तरह से, पर कृष्ण इतने क्रोधित हो गए थे, इतने अपने भक्त के सुरक्षा के चिंता से इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने कुछ सुना नहीं, सीधा दौड़ के जा रहे थे वो। अभी मैं सारी लीला बता रहा हूँ, मुझे काफी मिनट लग रहे बताने को, ये कुछ क्षणों में हो रहा है सब कुछ। कृष्ण कूद गए नीचे और दौड़ने लग गए, और अर्जुन अभी देख रहे, तो अर्जुन देखा कुछ हुआ नहीं, तो अर्जुन भी अपने रथ से कूद गए और अर्जुन कृष्ण के पीछे भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे कृष्ण को, कृष्ण रुक जाओ, पर कृष्ण बिल्कुल सुन नहीं रहे थे। तो अभी जब दो योद्धा तीरों से, धनुष और बाण से युद्ध करते तो काफी दूर होते हैं वो, अगर तलवार से युद्ध कर रहे होते तो पास में होते। तो अभी भीष्म और अर्जुन में काफी अंतर था, तो कृष्ण वो भीष्म वो सारा बीच में का अंतर लांग के भीष्म की ओर जा रहे थे। जब इस तरह से जा रहे थे तो अर्जुन चिल्ला रहे थे, कृष्ण रुक जाओ रुक जाओ, पर कृष्ण सुन नहीं रहे थे। तो अर्जुन दौड़ रहे थे, अर्जुन ने एक जोर से छलांग मारी और सीधे वो कृष्ण के पास में जाके गिर गए और उन्हें कृष्ण के पैर को पकड़ लिया, और ताकि कृष्ण के पैर को पकड़ के वो कृष्ण को रोक सके। पर कृष्ण इतने क्रोध में और भावना में थे कि कृष्ण फिर भी दौड़ते रहे और वो अर्जुन को घसीट रहे थे। कृष्ण दौड़ रहे थे और दौड़ते हुए वो भीष्म की ओर जा रहे थे। उन्होंने भीष्म से कहा, जब कोई राजा गलत कार्य पे लगता है तो उसके मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो राजा को सही मार्ग पे लाए, कि तुमने धृतराष्ट्र को सही मार्ग के नहीं लाया, इसीलिए तुम इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हो और मैं आज तुम्हारा वध कर दूंगा। कुछ बड़े क्रोध से भीष्म को चिल्लाते हुए जा रहे थे, और जब इस तरह से जा रहे थे तो भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हो गए। यही लीला देखने के लिए उन्होंने सारा युद्ध किया था, तो उन्होंने अपना धनुष बाजू में रख दिया और कहा, हे केशव, मैंने पूरा प्रयास किया पर धृतराष्ट्र दुर्योधन से इतना आसक्त था कि वो अंधा हो गया था। तो एक्चुअली धृतराष्ट्र हैड टू लूज एवरीथिंग बिफोर ही लॉस्ट हिज ब्लाइंडनेस, मतलब वो अंधे हो गए थे आसक्ति से, और उनके आसक्ति की जो भी चीजें थे सारे उनके पुत्रों का जब वध हो गया, कुछ भी आसक्ति के रहा नहीं, तभी आसक्ति उनकी गई। तो इस तरह से उनके आसक्ति का अंधे हो गए थे। तो यहाँ पे भीष्म बता रहे हैं कि मैंने प्रयास किया पर धृतराष्ट्र माने नहीं, पर अगर आप समझते हो केशव कि मैं जिम्मेदार हूं तो आओ आप मेरा वध कर दो, आपके हाथों से मृत्यु पाना मतलब मैं जीवन की परम गति प्राप्त कर लूंगा। इस तरह से भीष्म बड़े प्रसन्न हो गए थे, कृष्ण वो क्रुद्ध होकर दौड़ रहे थे, और अभी अर्जुन ने देखा मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं। तो अर्जुन ने क्या किया, वो अर्जुन ने कृष्ण के पैरों को पकड़ा था पर कृष्ण को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। तो अर्जुन ने क्या किया, अभी अपने जो उनके बड़े क्षत्रिय पैर थे उन्हें ऊपर उठाए और जोर से जमीन पे मारे, और जब जमीन पे मारे तो वो क्षत्रिय थे, बड़े शक्तिशाली थे, तो जमीन में खड्डे हो गए, दोनों पैर उन्हें ऊपर उठा के जमीन में मार दिए, और जब जमीन में खड्डे हो गए उनका पैर वो खड्डों में अटक गया, और पैर खड्डों में अटक गया, उन्होंने कृष्ण को पकड़ के रखा था, तो क्या हो गया, उसके कारण कृष्ण रुक गए। और इस तरह से जब वो रुक गए, अर्जुन चिल्ला रहे थे, कृष्ण रुक जाओ, तुम युद्ध मत करो, मैं भीष्म का वध करूंगा। और जब इस तरह से दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गए, तो कृष्ण क्या हो गया था, जब इस तरह से वो चक्र उठा के दौड़ रहे थे तो उनका जो उनकी जो उत्तरी थी ऊपर का वस्त्र था वो नीचे गिर गया था, उनके पारे सारे बाल बिखर गए थे और उनको भीष्म के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। और जब अचानक वो दौड़ रहे थे और रुक गए,
अरे अर्जुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तो बाल उनको कुछ और चीज का ध्यान ही नहीं था। और तभी अर्जुन ने कहा, कृष्ण तुम युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, मैं भीष्म का वध करूंगा। इस तरह से बोले तो कृष्ण शांत हो गए। और जब कृष्ण शांत हो गए तो भीष्म पितामह इस दृश्य को देख रहे थे और उनके लिए सारे जीवन में सबसे बड़ा जो आकर्षक दृश्य था वो ये था। और जब उनका अंतिम समय आया तो वो इसी दृष्टि को, इसी प्रसंग को याद करते हैं। अभी मान लीजिए अगर कोई हत्यारा हमारा वध करने आता है तो हम उससे भयभीत हो जाएंगे, और ऐसी अगर हम पे नौबत आ गई, हम बच भी गए, तो बाद में वो हत्यारे की जो इमेज है, का जो चित्र है, हम भूलने का प्रयास करेंगे उसको, हम उसको याद करने का प्रयास नहीं करेंगे। पर भीष्म पितामह याद करते हैं और वो कहते हैं कि क्यों याद कर रहे हैं? वो ये नहीं देख रहे हैं कि अरे ये कृष्ण मेरा वध करने आए। वो क्या देख रहे हैं? वो देखे कृष्ण का कितना प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, इतना प्रेम है कि वो अपने भक्तों के लिए अपना वचन भी तोड़ रहे हैं। तो उनके लिए भीष्म पितामह ये महान भक्त है। वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा अमर है। ये शरीर का कभी ना कभी तो अंत होने ही वाला है। शरीर के अंत से उनको ज़्यादा चिंता नहीं है। उनको देख रहे हैं कि मेरे आत्मा क्या है, वो कृष्ण के भक्त है। और वे कृष्ण कितने भक्तवत्सल है कि अपने भक्त के लिए अपना वचन भी त्याग रहे हैं वो। तो ऐसे कृष्ण के प्रेम को देखकर मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। इसीलिए न कृष्ण भीष्म को बाह्य रूप से देख रहे हैं, न भीष्म कृष्ण को बाह्य रूप से देख रहे हैं। ये हृदय से हृदय का संबंध जो है, यही भक्ति कहलाती है। इस दुनिया में हाँ अनेक ग्रंथ होते, कादंबरियां होती है, मूवीज होते हैं, चित्रपट होते हैं जो प्रेम के बारे में बात करते हैं। तो उसमें जो प्रेम के बताया जाता है वह वास्तव में अगर प्रेम हो भी तो वो क्षणिक प्रेम है। जो हमारी हृदय की प्रेम की मांग है, हमारा हृदय हमेशा चाहता है कि मैं किसी से प्रेम करूं और वह व्यक्ति मुझसे प्रेम करे, यह जो हृदय की प्रेम की मांग है वो वास्तव में भगवान में पूरी होती है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान हमसे अभी भी प्रेम करते हैं, अभी वास्तव में हम उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा हृदय उनकी ओर मुड़ा हुआ नहीं है, हमारा हृदय उनके दूर मुड़ा हुआ है। जिस हद तक हम मान लीजिए अगर हम एक ऐसे कमरे में हैं जहाँ पे बहुत रोशनी है पर हमारी आंखें बंद है तो हम वो रोशनी को देख नहीं सकते, उसी तरह से हम अगर हमारा हृदय इस दुनिया में भौतिक चीज़ों से बहुत आसक्त है तो हम भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, भगवान हम पे कितनी कृपा करते हैं, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। जितना हम भगवान की ओर मुड़ते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, तो उतना क्या होता है, हमारे अंदर की आँख खुल जाती है और भगवान का जो प्रेम है वह हम देख पाते हैं और उसी में हमको सर्वोच्च आनंद मिलता है। तो भगवान के प्रेम में जो आनंद है वो कैसा आनंद है? वो ऐसा आनंद है जो हम जितना आध्यात्मिक प्रगति करते हैं उतना हम उस आनंद को अनुभव करते हैं। जैसे कि अगर कोई नवजात शिशु है, अभी अभी जन्म हुआ शिशु का, तो वास्तव में उस शिशु को कुछ भी पता नहीं होता है। जब जन्म होता है तो वो रोने लगता है और फिर जब उसको उठाती है माँ और माँ अपने स्तन से दूध पिलाती है तो पहले तो उसको ये भी पता नहीं होता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो मेरी माँ है। उसको सिर्फ अभी कुछ मुंह में लग रहा है और वो वहाँ से कुछ स्वादिष्ट आ रहा है, पी रहा है। तो धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो समझता है कि ये केवल एक दूध का स्रोत नहीं है, ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति मेरी माँ है और ये मुझसे प्रेम करती है। तो ये कैसे होता है? जितना वो बड़ा होने लगता है उतना वो चेतना जागृत होती है और फिर वो तभी समझने लगता है। तो जब ऐसे थोड़ा भी शिशु बड़ा हो गया है और मान लीजिए अभी रात को बहुत ठंडी है तो माँ देखते कि अरे मेरा बालक जो है, मेरा शिशु जो है वो थोड़ा कांप रहा है, तो माँ कह एक शाल लाएगी और उसके ऊपर डाल देगी। तो अभी जब वो बालक बहुत छोटा है उसको कुछ भी समझेगा नहीं, उसको लगेगा पहले मुझे ठंडी लग रही है, अभी ठंडी चली गई है। पर बाद में जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझता है कि मेरी माँ कितना प्रेम करती है, तो अभी आंखें बंद है फिर भी एक समय ठंडी लग रही है, उसके बाद में ठंडी नहीं लग रही है। तो भले ही वो बालक ने आंखें खोली नहीं है, उसने देखा नहीं है, वो समझ जाता है। क्या समझता है? मेरी माँ ही होगी और माँ ने मुझ पे एक शाल डाली है, उसके कारण मुझे अभी ठंडी नहीं लग रही है। तो उसी तरह तो ये क्यों समझ पाता है कि बालक बड़ा हो गया है, जितना बड़ा हो गया है उतना वो समझ पाता है। तो उसी तरह से भी हम चाहे जन्माष्टमी के अवसर पे मंदिर में आते हैं, मंदिर में शायद कीर्तन हो रहा होता है, मंदिर में एक दिव्य वातावरण होता है, वो हमें अच्छा लगता है, तो एक अच्छा अनुभव करके हम चले जाते हैं। पर अगर हम हमारे बुद्धि की दृष्टि से देखेंगे, ये कीर्तन करने में, भगवान के कीर्तन में लीन होने में बड़ा आनंद है, ये आनंद क्यों होता है? हमारा मन बड़ा विचलित होता है, पर अगर हम भगवान के कीर्तन में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि मन शांत हो जाता है। भले ऐसे बहुत से लोग हैं जो मूर्ति पूजा को मानते नहीं हैं, पर फिर भी वो लोग महसूस करते हैं कि अगर मंदिर के वातावरण में हम आ जाते हैं तो शांति आ जाती है। तो अभी वो लोग समझ नहीं पाते कि शांति कहाँ से आ रही है। मंदिर के दीवारों से शांति नहीं आ रही है, मंदिर के फर्श से शांति नहीं आ रही है। शांति क्यों आ रही है? क्योंकि भगवान वहां पर विद्यमान है। तो क्या है कि भगवान कि जब हम सानिध्य में आते हैं तो क्या हो रहा है कि हम एक दिव्य प्रकार की शांति अनुभव करते हैं। ये शांति क्या है? अगर हम थोड़ी जिज्ञासा करेंगे और थोड़ी भक्ति के विधि में लगेंगे तो कैसे है हम समझेंगे। जैसे छोटा बालक होता है, वह जब बहुत ही छोटा होता है पहले उसको ठंडी लग रही है, बाद में ठंडी नहीं लग रही है। पहले ठंडी क्यों लग रही थी, अभी ठंडी क्यों नहीं लग रही है, समझ में नहीं आता है उसको। सिर्फ अभी क्या लगता है, अभी ठंडी से राहत मिल गई है। पर जैसे बालक बड़ा होता है तो वो जब शाल देखता है उसके शरीर पे, वो शाल से क्या समझता है, मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है। और उसके प्रेम का या क्या स्वरूप है अभी कि उन्होंने मुझे शाल डाली है, उससे मुझे शांति मिल रही है, उससे मुझे ठंडी से राहत मिल रही है। उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि हम जब भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो हमें शांति क्यों मिल रही है, हमारी चिंता कम क्यों हो रही है? यह हमारे स्तर पे भगवान का प्रेम दर्शाया जा रहा है। हम जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो जैसे माँ अपने बालक पे शाल डालती है, तो भगवान उनके स्मरण की शाल हमारी चेतना पे डालते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसी। भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरी चेतना में लग जाते हो, आप मेरा स्मरण करते हो, तो क्या होगा, मेरी कृपा से आप सारी समस्याओं के पर जाओगे। तो क्या होगा, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो जो भी समस्या है उसकी हम उससे उद्विग्न नहीं होंगे, क्योंकि हम समझेंगे क्या समस्या है, पर भगवान इससे बड़े हैं और भगवान इस समस्या का या तो हल कर देंगे या समस्या का सामना करने की शक्ति मुझे दे देंगे। हम अंदर से शक्तिशाली बन जाते हैं और शक्तिशाली जो हमको राहत मिलती है चिंताओं से, जो अंदर से संतुष्टि और शक्ति मिलती है, यह वास्तव में हमारे स्तर पे भगवान के प्रेम का प्रदर्शन है। और इस तरह से अगर हम ज्ञान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से समझेंगे कि यह भगवान का प्रेम है मेरे लिए, तो हम भक्ति में और प्रगति करेंगे और भक्ति में मन लगाओगे और लगाएंगे और उससे क्या होगा, और शांति और संतुष्टि हम महसूस कर पाएंगे। और इस तरह से हम एक स्तर पे आ जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, कि हर पर हर पल में आनंद है, हर पल में ऐसा आनंद है कि वो एक सागर है और सागर का भी वर्धन हो रहा है। ऐसा आनंद हम सब प्राप्त करते हैं कि भगवान की भक्ति के द्वारा। और वही भगवान आज के दिन में हजारों साल पहले इस भौतिक जगत में आए। जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं वो क्यों आते हैं? द डिसेंट ऑफ द डिवाइन इज फॉर द पर्पस ऑफ द असेंट ऑफ द ह्यूमन। द डिसेंट ऑफ द डिवाइन, भगवान यहां पे क्यों आते हैं? इसलिए कि हम हमारी चेतना ऊपर उठे और फॉर द एसेंट ऑफ द ह्यूमन, ताकि जो मानव है हमारी चेतना उनके स्तर पे आ जाए और हम उनकी प्राप्ति कर सके। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, अनेक स्तर है, अनेक उद्देश्य है उसके। वो यहाँ पे धर्म की संस्थापना करते हैं, पर उससे महत्वपूर्ण क्या है, वह ज्ञान देते हैं, वो पद्धति दिखाते हैं जिसके द्वारा हम उनके पास जा सके। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो कहते हैं कि जब आप मेरी लीलाओं को समझोगे, आप मेरे जन्म को समझोगे, तो उसके द्वारा आप मेरी ओर आकर्षित हो जाओगे, और आप जब मेरी ओर आकर्षित हो जाओगे तो आप मेरी प्राप्ति कर लोगे, और यही प्राप्ति दिलवाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं कृष्ण के रूप में, अवतार के रूप में, तो वे एक अंधेरी कोठरी में आते हैं। देवकी और वसुदेव उनको कंस ने अपने कारागृह में बंद कर लिया होता है। तो क्यों बंद किया होता है, क्योंकि बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई होती है। जब देवकी का विवाह होता है तो भविष्यवाणी क्या हुई होती है कि ये देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। और यह जब सुनता है कंस तो क्या करता है, वो तुरंत देवकी का ही वध करने के तैयार होता है, उसकी बहन है। तो ये इतना इतना घृणास्पद कार्य है ये, कि वास्तव में किसी क्षत्रिय को किसी स्त्री पर आक्रमण करना यह घृणास्पद है, ऊपर से किसी भाई को अपने बहन पर आक्रमण करना यह घृणास्पद है, और जब किसी स्त्री का विवाह हो रहा है उस समय पे उसका आक्रमण करना ये घृणास्पद है। तो दिस वॉज सिन क्यूब जो है, तीन स्तर पे वो महापाप कर रहा था। तो तभी वसुदेव क्या होता है, वसुदेव अभी जानते हैं कि कम से बड़ा शक्तिशाली है, और वह कम से शक्ति के स्तर पे युद्ध नहीं कर सकते, और ऊपर से वो सोचते हैं कि युद्ध हो जाएगा तो ये अपशकुन हो जाएगा, विवाह का मंगलमय मार्ग है। तो इसीलिए वो प्रतिकार कैसे करते हैं, वो बुद्धि से कम से कम प्रतिकार करते हैं। उसको कहते हैं कि जिसके जो पुत्र हो गए तुमको इससे तो खतरा नहीं है, इसके जो पुत्र हो गए तो मैं उनके पुत्र तुमको दे दूंगा। तो तभी कंस मान लेता है। अभी कंस क्यों मान लेता है, अभी कुछ लोग पूछते हैं कि अगर कंस को देवकी के गर्भ से ही चिंता थी, उसके पुत्र से भय था, तो फिर वह उसने देवकी और कंस को एक ही कारागृह में क्यों रखा। अगर अलग जगह पर रखता था तो उनका पुत्र ही नहीं होता था, पुत्र नहीं होता तो खतरा नहीं होता था, तो ऐसा क्यों नहीं किया। तो वास्तव में कंस क्या था, कंस एक असुर था, और असुर मतलब क्या था, उसका भाव था कि वह जब उसने वो आकाशवाणी हुई कि आठवां गर्भ मेरा वध करेगा, तो उसने अपने अहंकार से सोचा कि मैं, ये जो देवताओं ने आकाशवाणी की है, मैं इसको झूठा साबित करूंगा। तो उसने क्या सोचा कि जैसे पहले मैंने देवताओं को हरा दिया है युद्ध में, तो वैसे अभी मैं देवताओं के वचनों को भी हरा दूंगा। इसलिए उसने क्या सोचा कि होने तो देवकी का पुत्र, होने के बाद मैं उसका वध करूंगा, और उसके द्वारा मैं ये देवताओं को गलत साबित करूंगा। तो इस भाव से उसने क्या किया, वसुदेव देवकी को कारागृह में रखा, और उसके बड़े बेरहमी से उसके छह पुत्रों को मार दिया। सातवां पुत्र जो हुआ कन्या हुई, और कन्या वो उसके हाथों से छूट गई और वो देवी के रूप में प्रकट हो गई। और फिर जो आठवां गर्भ जब हुआ, आठवां पुत्र जब हुआ, तो क्या हुआ, कृष्ण एक अंधेरे कोठड़ी में जो कारागृह में प्रकट हुए थे। तो वो जो है वो कोठड़ी थी, वो वास्तव में हमारे हृदय के समान है। वास्तव में हमारे हृदय में हमारा जो आत्मा है वो वास्तव में बंधा हुआ है। अभी जो आत्मा है वो अनंत जीवन चाहता है, पर ये जो शरीर के में जो बंधा होता है, तो वो वास्तव में सीमित जीवन जो मृत्यु के छाया में जिया जाता है, ऐसा जीवन होता है। तो उस तरह से जो कारागृह में बंधा हुआ था, वो जैसे वसुदेव देव की कारागृह में बंधते, उसी तरह से हमारी जो आत्मा है इस शरीर के कारागृह में बंद है। और जब कृष्ण प्रकट हुए तो क्या हुआ, कृष्ण प्रकट हुए तो अचानक वो कारागृह के दरवाजे खुल गए, और वसुदेव और देवकी के जो वसुदेव के जो पीढ़ी ये थे शैकल्स, जो जंजीर थी, वो टूट गए, खुल गए, और उन्होंने कृष्ण को वहां से ले गए। तो कृष्ण का जन्म हुआ तो एक चमत्कार हो गया। उसी तरह से जब कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं, भले ही अंधेरा हो, वहां पे हमारी जो आसक्तियां है, हमारी जो जो ऐसी आदतें हैं जो हमें पीछे रखती है, वो सब टूट जाती है और अंधेरे में रोशनी आ जाती है। तो वो जो रोशनी कृष्ण अपने प्रकटीकरण से उन्होंने की थी, वैसे ही रोशनी वो सब हमारे हृदय में भी लाते हैं। और वही प्रार्थना हम कर सकते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे हृदय में आ जाओ और मेरे हृदय को आप रोशन कर दो आपकी ज्ञान के द्वारा, आपकी भक्ति के द्वारा, और मुझे आपके धाम में ले जाओ। यही प्रार्थना के साथ हम ये प्रभुचरणकांत करते हैं। कृपया एक और बार दोहराए जो पहली प्रार्थना हो रही थी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।